जब वसुदेव जी विवाह के बाद अपनी पत्नी को ले जा रहे थे अपने घर, तो उस समय कंस उनके रथ को हाँकने लगा। कंस का इस प्रकार भगवत सेवा में लगा हुआ देखकर देवता इसको सह नहीं पाए। वो जानते थे कि कंस बहुत दुष्ट है, आज ये अपने बहन के प्रति स्नेह दिखा रहा है लेकिन वास्तव में यह दुष्ट है। देवताओं को चिंता हुई कौन से इस तरह से भगवान के माता पिता की सेवा करेगा तो भगवान इसके भीड़ से इसको मार नहीं पाएंगे। अतः वे लोग कंस के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करना चाहते हैं तो आकाशवाणी कर दे रहे हाँक रहा था उसी समय। देवताओं ने कहा, अरे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े स्नेह से पति गृह में पहुंचा रहे हो उसी देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। बस इतना सुनते ही कंस का स्नेह विदा हो गया। जिस बहन और बहनोई को उनके घर भेज रहा था रथ से आ रहा, यद्यपि वो राजा का पुत्र था उग्रसेन महाराज का, रथ हाँकना ये ड्राइवर का काम है राजा का नहीं, लेकिन ऐसा स्नेह उमड़ा कि वो रथ हाँकने लगा। ऐसा होता है, बहन विदा हो रही है अपने ससुराल जा रही है, इस विचार से कंस में स्नेह उत्पन्न हो गया। पर देवता लोग इसको बर्दाश्त नहीं किए, यह भगवान के माता पिता की सेवा करे। अतः कंस वास्तव में क्या है इसका पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने आकाशवाणी किया है, दुनिया देख ले कंस क्या स्वभाव का है। ये वास्तव में देवकी से प्रेम करता है कि द्वेष करता है। आकाशवाणी सुनते ही कंस देवकी का वध करना चाहे, तुरंत उसने देवकी की चोटी पकड़ लिया बाएं हाथ से और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के देवकी का मस्तक काटने के लिए तैयार हो। तब श्री वसुदेव जी उसे सांत्वना दे रहे हैं सबसे पहले वो कहते हैं, हे राजकुमार, श्लाघनीय गुण, आपकी आपके गुणों की प्रशंसा की करते हैं बहुत से वीर। सुबह श्लाघनीय गुण, बड़े बड़े वीर आपके आपकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि कंस ने, कंस कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया है, कभी स्त्री का वध नहीं किया, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है, बड़ी बड़ी लड़ाई किया है, लेकिन स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाया। क्योंकि आप भुजवंश के कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, भुजवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाए हैं, तो आपको ऐसा नीच कर्म नहीं करना चाहिए। आप देखिए, एक तो यह स्त्री है, दूसरे आपकी बहन है, इसलिए बहन कह रहे हैं कि उग्रसेन जी और देवक दोनों भाई थे। इस प्रकार से देवक की पुत्री कंस की चचेरी बहन होती थी। वसुदेव जी समझा रहे हैं, आप देखिए, आप विचार कीजिए, एक तो यह स्त्री है, दूसरी बात है कि यह आपकी खास बहन है, और तीसरी बात है उद्वाह परवणी, इसका विवाह उत्सव चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे इसको मारेंगे। तब कंस ने कहा, मैं मृत्यु के भय से मार रहा, इसका बेटा मेरा वध करेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ ना देवकी रहे न पुत्र हो। जब देवकी का पुत्र मेरा शत्रु है, वध करेगा, तो इसलिए मैं देवकी को समाप्त करना चाहता हूँ। इस पर वसुदेव जी समझाते हैं, मृत्यु जन्म होता वीर देह न सह जाए, हे वीर, प्राणियों को की मृत्यु निश्चित है, देह के साथ ही मृत्यु जन्म लेती है। जिस दिन विधाता ये देह देता है, उसी दिन लिख देता है किस दिन किस घंटा पर किस मिनट पर किस सेकंड पर यह शरीर छुड़ा दिया जाएगा। मृत्यु देह न सहजायते, देह के जन्म के साथ ही जन्म लेती है मृत्यु। यह विधाता का विधान है। जब ब्रह्मा जी शरीर देते हैं तो उसी दिन लिख देते हैं किस वर्ष किस महीना और किस महीने किस क्षण में शरीर छुड़ा दिया जाए। जब मृत्यु निश्चित है तो इस अपरिहार्य विषय को पाप करके फिर दूर नहीं करना चाहिए, दूर होगा भी नहीं। कितना भी पाप करेंगे मृत्यु होगी ही। वो कहा कि ठीक है मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं बहन का वध करके यदि कुछ वर्ष जी जाऊंगा तो ठीक है ना। देवकी को मारने से मृत्यु टल जाएगी। वसुदेव जी कहते हैं कि मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। और किसी भी उपाय से इसको टाला नहीं जा सकता। क्योंकि मृत्यु जन्म लेती है देह के जन्म के साथ ही। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी बाद में मृत्यु लिखते हैं, नहीं, उसी दिन जिस प्रकार कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ता है उसको टिकट दिया जाता है, तो जिस स्टेशन पर उसको उतरना है वहाँ का टिकट निश्चित होता है। अगर कोई टिकट खिड़की पर जाता है तो कहे कि हमको टिकट दीजिए, तो आवाज़ से टिकट कटने वाला पूछेगा कहाँ का टिकट। वो कह दे आपकी जहाँ इच्छा हो दे दीजिए, तो भगा देगा, टिकट विंडो से भगा देगा। टिकट जहाँ खरीदते हैं वहीं बता देना पड़ता है कि यहाँ कर दीजिए। मृत्युर्जन्मवताम वीरा देह न सहजाय और देवाब्द सतान्ते वाय। चाहे मृत्यु आज हो वा अथवा अब्द सतान्ते, अब्द आज मृत्यु हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है। पर आप मृत्यु को टाल नहीं सकते। यदि मृत्यु को टालने के लिए आप देवकी का वध करते हैं तो आपका जीवन भविष्य में बहुत दुखद होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति का जीवन निश्चित है, मरना निश्चित है, और मरने के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः पाप करके जीने की अपेक्षा सत्कर्म करते हुए मर जाना ठीक है, क्योंकि पाप करने वाले को बहुत दुख मिलता है। अगला जन्म निश्चित है, वो जन्म कैसे मिलेगा जैसा हम कर्म करते हैं। इस जन्म में जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार शरीर दिया जाता है। अतः पाप क्यों करेंगे, पाप नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी समझा रहे हैं आपकी प्रशंसा वीर लोग करते हैं, आप भोजवंश के होनहार व्यक्ति हैं, जस बढ़ाने वाले हैं, कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, अतः आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि आपकी कीर्ति को लो थूके। भगवान अर्जुन से कहते हैं भगवद गीता में कि अर्जुन बहुत से वीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और जब तुम युद्ध से भाग जाओगे तुम लोग यही कहेंगे। जब सेना को देखा अर्जुन तो डर गया, उस समय तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, तुम युद्ध करोगे, अपनी कीर्ति बचाने के लिए, क्योंकि संभाविता सच्चा कीर्ति मरना दधिरिष्यते, संभावित सम्माननीय व्यक्ति की अकीर्ति मरण से भी अधिक दुखद है। अतः जो व्यक्ति कीर्तिशाली है उसे अपनी कीर्ति बचानी चाहिए। वंश जैसे दुष्ट की वसुदेव जी सराहना कर रहे, यह नीति है। क्षत्रियों में खास करके तो साम दाम दंड विभेद पहले किसी भी व्यक्ति को साम नीति से समझाना चाहिए। साम नीति का अर्थ है गुण की प्रशंसा, गुण ना भी हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सामान्य नीति है, दूसरी नीति है दाम। कुछ पैसा दे करके काम कराना चाहिए, यही लोक में चलता है। जो एक नंबर के बेईमान हैं उनको आप कह दीजिए कि बेईमान है तो प्रसन्न नहीं होगा। किसी ऑफिसर को जाकर कहिए तुम घूस लेते हो, वो काम नहीं होगा। जानता है कि रिश्वत देना अपराध है, लेने वाला भी अपराधी है, लेकिन देता ही है व्यक्ति। जानता है कि बिना पैसा दिए काम होगा नहीं, पैसा देकर काम कर। एक नीति है भेद नीति, महाभारत में कथा है भगवान युधिष्ठिर महाराज के मामा नकुल सहदेव के मामा युद्ध में भाग लेने आए थे, पर कहाँ ये नहीं निश्चित था। शल्य उनका नाम था, तो उनको बहुत आदर दे करके दुर्योधन अपने पक्ष में ले लिया। युधिष्ठिर महाराज देखे मामा उस विपक्ष में है, तो वे प्रणाम किए जैसे द्रोणाचार्य को प्रणाम किए, भीष्म पितामह को प्रणाम किए, इसी तरह से शल्य को भी प्रणाम किए। तो शल्य ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी विजय हो। तो युधिष्ठिर महाराज पूछे, आप हमारे विपक्ष में हैं, मैं कैसे जीत पाऊंगा? तो शल्य ने उपाय बताया। देखो, मैं कर्ण का सारथी बनूंगा, मैं सारथ में रथ हाँकने में बहुत प्रवीण हूँ, तो दुर्योधन मुझे सारथी बनाएगा कर्ण का। तो मैं एक काम करूँगा, भेद नीति बता रहे, जब कर्ण युद्ध के लिए चलेगा तो मैं रथ हाँकते हुए चलूँगा, और कर्ण में भेद बुद्धि डालूँगा, उसको हतोत्साहित करूँगा। मैं कहूँगा कि तुम अर्जुन के सामने कुछ नहीं हो, अर्जुन के गुणों की प्रशंसा करूँगा, कर्ण को हताश करूँगा। यही हुआ, जब कर्ण अपनी प्रशंसा कर रहा था तो शल्य कहते हैं, तुम अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं हो, सारथी थे और रथी की निंदा कर रहे। उन्होंने स्मरण दिलाया, अर्जुन के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, राजा विराट के यहाँ तुम गए थे ना, इस तरह से तुम्हारी पराजय है। सभी कौरवों के साथ, यहाँ तक कि भीष्म के साथ तुम थे, लेकिन तुम्हारा मुकुट छीन लिया गया, तुम्हारे आभूषण सब उतार दिया अर्जुन। इस तरह से कई बार बात कहे, भेद डाल रहे थे मन में। उसका परिणाम हुआ कि कर्ण पराजित हो गया, अर्जुन उसे मार दिया। यह है भेद नीति। और इससे भी काम न हो तो दंड, लेकिन दंड वही दे सकता है जिसमें शक्ति है। वसुदेव जी सामनीति थी अपना है, सामनीति में पांच चीज है, गुण कथन, संबंध कथन, वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को कि आपकी यह बहन है, संबंध बता रहे हैं। पर किसी भी उपाय से, किसी भी प्रकार से कंस माना नहीं, देवकी को मारना ही चाहता, चोटी पकड़ लिया था, रथ से उतर करके नीचे से देवकी को मारना चाहता था। देवकी के चोटी को पकड़ लिया है बहुत जोर से, देवकी मस्तक झुकाई थी, इतना नीच स्वभाव का था। उस विवाह के अवसर पर जो चोटी सजाई गई सुगंधित तेल से, फूलों से, उस चोटी को पकड़ने में उसे शर्म नहीं आई। कंस जीवन मृत्यु के संबंध रहस्य को जानता नहीं, वसुदेव जी समझा रहे हैं, राजा या राजकुमार आप सपना देखते हैं, कंस कहा कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है तो सपना में स्वप्ने जथा पशक देह में दर्ज, तो सपना में इसी देह के समान दूसरे देह को देखता है, तो वास्तव में नहीं है लेकिन सपना के देह को मैं मान लेता है, और जागृत देह को भूल जाता है। यदि सपना देख रहा है कि मैं राजा हूँ, या कंगाल हूँ, तो राजा अथवा कंगाल जैसा ही अपने को फील करता है। वो बेड पर पड़े हुए देह को भूल जाता है, सपना करते हैं कोई सच्चा मान लेता है। जो सपना देख रहा है कि हमको बाघ खा रहा है या हमारा कोई मस्तक काट लिया, सपना के मस्तक को, फिर भी वो व्यक्ति सोचता है हाय मेरा गर्दन कट गया, हमारा मस्तक कट गया, वास्तव में उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो बेड पत्ते से पड़ा हुआ है। परंतु चूंकि वह स्वप्न शरीर में है, सपना देखता है, तो सपना में देखता है कि हमको धन मिल गया है, कभी कभी आदमी सपना देखता है हमारा मस्तक कटा हुआ है, जगने पर ध्यान देता है कि हमारा मस्तक क्या हुआ, तो देखता है हाय अभी मस्तक कटा नहीं है। सपना देखना और जागृत होना, इन दो रहस्यों से हम जीवन को और मृत्यु को समझ सकते हैं। मान लीजिए हम सपना देख रहे हैं, यह सपना तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन मान लीजिए हम सपना देखते रहे, रात में 4 घंटा सपना देखे, चौबीस घंटा में 4 घंटा सपना दे, तो 4 घंटा हम अपने को भूले रहे, जब तक जगे नहीं तब तक भूले रहे, सपना के शरीर को सत्य मानते रहे, यदि 100 वर्ष का जिएंगे तो कितने वर्ष सपना देखेंगे? 24 मिनट, 4 घंटा, 100 वर्ष में 100 दिन तक देखें सपना? पर 1 वर्ष जो लिए यदि 24 घंटे में 4 घंटे सोए और सपना देखते रहे तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 16 साल हम दूसरे स्वप्न तक देह में रहे, सपना देखते रहे, मतलब दूसरे देह में रहे। इस तरह से तो 16 साल हम भूले रहे, सपना के देह को सत्य मानते रहे। फिर जग जाते हैं, दूसरे देह में हो जाते हैं। इसी तरह से यह संसार सपना की तरह, जो कुछ भी देख रहे हैं यह सपना ही है। फिर जगेंगे तो ये जन्म है, जन्म जैसा है, और सपना देखना ये मरण जैसा है। मरने में और सपना में क्या अंतर है? कुछ नहीं। इसी देह में हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या मरण है और क्या जन्म है। हे राजकुमार, आगे जन्म लेना पड़ेगा। सभी शास्त्र कहते हैं, विशेष करके भगवद गीता, तो पाप मत करो, भगनी बद रूप पाप मत करो। अन्यथा अगला जन्म हमारे अधीन नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे अथॉरिटी के हाथ में, जमराज। जमराज जी के हाथ में है कि हमारा अगला जन्म कैसे होगा। यदि पाप करेंगे तो बहुत दुखद जन्म होगा, बहुत निकृष्ट शरीर हो जाएगा। भी कंस कहा इस समय मैं राजा हूं, मैं राजकीय शरीर मिला है, फिर यह शरीर कहाँ मिलेगा, इसलिए पाप करके भी इस शरीर को बचाना चाहिए। तो वसुदेव जी कहते हैं राजन किसी भी शरीर में जाओगे वही शरीर परम प्रिय होगा। इस समय राजा के शरीर में हो राजा का शरीर प्रिय लग रहा है, लेकिन जिस दिन चींटी के शरीर में जाओगे तो चींटी का शरीर भी प्रिय लगेगा। जिस शरीर में जीव जाता है वही शरीर प्रिय लगता है। शरीर तो बदलना होगा, पाप करोगे बहन बद रूप पाप उससे तुमको नरक मिलेगा। नरकी शरीर भी बड़ा प्रिय होता है। जैसे कुत्ता सुअर आदि का जन्म है उसको मनुष्य बहुत घृणित मानता है, लेकिन कुत्ता बन जाने पर वही शरीर प्रिय लगेगा। तो शरीर तो मिलेगा, इस समय राजा का शरीर मिला है, नरकीय शरीर मिलेगा कुत्ता सुअर आदि का, तो वही शरीर तुमको प्रिय लगेगा। एक बार की सच्ची घटना है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र पर रंज होकर के साप दे दिए तुम सुअर हो जाओ। स्वर्ग के राजा इंद्र सुअर हो गए कुछ वर्षों के बाद। उसने ब्रह्मा जी याद किए, इंद्र कहाँ गए हैं। तब बृहस्पति जी ने बताया उसको तो मैं साप दे दिया है, सुअर हो गया। तो ब्रह्मा जी गए बुलाने के लिए इंद्र को। इंद्र देवता ब्रह्मा जी के चार मुंह को देखकर भागने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, सुनो सुनो तुम देवराज इंद्र हो, तो इंद्र बने हुए हम सुअर बने हुए देवराज इंद्र कहते हैं, जब था तब था, इस समय तो सुअर हो। जो ब्रह्मा जी ने कह दिया, मैं तुमको पुनः स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ, फिर देवताओं का राजा बनो। तो इंद्र कहते हैं, हमारा अकोमोडेशन है वहाँ, मेरे रहने के लिए घर है, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं का तो कोई मल मूत्र होता नहीं है, या अंत में इंद्र ने पूछा, सुअर ने पूछा, मैं जाऊंगा स्वर्ग, लेकिन हमारे लिए भोजन की व्यवस्था है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तो देवताओं का मल होता ही नहीं है, तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो सुअर कह दिया, हम जाकर वहाँ मरेंगे, जो भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए खुभार नहीं है। मेरे बिहार में एक छोटे मनुष्य होते हैं, उनको मुसहर कहते हैं, नदी के तट पर रहते हैं, मांसा दिखाते हैं, कभी नहाते नहीं हैं। के मुसहर के गलती करते हैं तो उनकी माँ कहती है कि कितना सुंदर शरीर मिला है, कितना आराम है, सुअर मुसहर बने हो, कभी नहाना नहीं पड़ता है, गलती करोगे तो भगवान तुमको ब्राह्मण बना देंगे और नहाते नहाते मर जाओगे। ब्राह्मण को बहुत नहाना पड़ता है। ये स्थिति है, जो शरीर में जीव जाता है वही शरीर पीर लगता है। ब्रजन तिष्ठन पदे के ना जहाँ भी कहने गए सके जथा तीन चलाऊ खाया देही कर्म गतिन गता। गुरुदेव जी समझाते हैं जैसे रास्ता चलता है व्यक्ति ब्रजन रास्ता चलते हुए व्यक्ति पहले एक पैर को जमा लेता है तब पिछला पैर उठाता है। जैसे तीन जलोक है घास पर रेंगने वाली जोंक अगले तीन को पकड़ लेती है तब पीछे से अपने शरीर को उठाती है। ऐसे ही पहले निश्चित हो जाता है कि हमको कौन देह मिलेगा तब व्यक्ति पहला शरीर छोड़ता है। सभी लोग चलते हैं वसुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं चलने का। दो पैर से चलते हैं तो एक पैर जमा लेते हैं आगे तब पिछला पैर उठाते हैं। जैसे जोंक अगला तीड़े पकड़ लेती है तब पीछे पीछे के शरीर को उठाती है। मेरा जन्म निश्चित हो रहा है अगला जन्म निश्चित हो जाता है तब यह शरीर छोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद डिसाइड होता है कि कौन शरीर मिलेगा। तो पहले कौन शरीर मिलेगा निश्चित हो जाता है तब यह शरीर छोड़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी पुराने घर में रह रहे हैं किसी नए घर में जाना है या घरांतर करना गृहांतर करना है तो आप पहले जो लेते हैं अपना डेरा अपना अकोमोडेशन जो लेते हैं तब पुराने घर को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पुराने घर को छोड़ दिए रोड पर हो गए फिर बाद में जो आते हैं घर नहीं पहले घर जो लेते हैं इसके बाद पुराना घर छोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अगला जन्म निश्चित है। कौन करते हैं भगवान करते हैं। हमारा जैसा कर्म है वे सब देखते रहते हैं और अगला जन्म कैसा होगा कीड़ा का जन्म होगा या पशु का या पक्षी का निश्चित हो जाता है। और किसी भी शरीर में जाएंगे वो शरीर बहुत प्रिय होगा। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो कितने अज्ञानी हैं। पुनर्जन्म हो रहा है, प्रत्येक मिनट का कर्म लिखा जा रहा है। उसके अनुसार ब्रह्मा जी सब सेट किए हैं, कैसा शरीर मिलेगा। शरीर निश्चित कर देते हैं, शरीर मिलना निश्चित हो जाता है तब यह शरीर छोड़ना होता है। क्योंकि जीवात्मा कर्म गतिम गतः, कर्म की गति, कर्म के अनुसार सब कुछ सेट रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। अतः किसी व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की कृपा पर निर्भर करना चाहिए। अगर चिंता करनी है तो केवल इस बात की करनी चाहिए कि अब से हमारा कर्म शुद्ध हो, अब से अच्छा जिंदगी जिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत जन्मों की बिगड़ी है बात, वो आज अभी सुधर जाएगा। किस बात से? होइ राम को नाम जपो, तुलसीदास जी को सुनाए, राम का बनकर राम का नाम जपो। बस अनेक जन्मों की बिगड़ी बात अभी आज अभी सुधर जाएगी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। होइ राम को नाम जपो, राम का वन करके भक्त होकर के नाम जप करो। तुलसीदास जी को समाज और कुसमाज का त्याग कर दो, खराब समाज का त्याग कर दो। अपने बच्चों का, पत्नी का मोह छोड़ करके बस भगवान का नाम जपो। कितना सरल है, अनेक जन्मों की बिगड़ी बात अभी सुधर जाएगी। कुसमाज क्या है? कुसमाज एक परिवार का मोह है। पत्नी बच्चों की चिंता करना, उनके लिए पाप करना, यही कुसमाज है। खराब संगति से बचना चाहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर अवसर दिया है, भक्तों का समाज है, इस समाज में भगवान के बारे में बहुत से साहित्य मिलते हैं, भक्तों के मुख से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, ऐसे अवसर से लाभ उठाना चाहिए। जय सिंह।